राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 7 नवंबर 1995 को दोपहर लगभग 2:30 बजे कुलायत में हुआ। राम
पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवनीरदाबाद पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। वेदों में पुराणों में शास्त्रों में परमात्मा का वर्णन आ रहा है, उस समय विशेषता से पंच देव है ये ईश्वर कोटि के माने गए हैं। पांचों में तीन तो भगवान शंकर, एक शंकर, एक शक्ति, एक गणेश, ये तीन, और एक सूर्य और एक विष्णु, ये ईश्वर कोटि के माने गए पांच। इनमें जब वैष्णव विष्णु भगवान को ईश्वर मानते हैं तो सूर्य और पार्वती गणेश शंकर के मंदिर चारों तरफ होते हैं। भीष्म मंदिर विष्णु भगवान का चारों कोने में चारों देवता का। जब सूर्य को इष्ट मानते हैं सौर तो संप्रदाय उन सूर्य का भीष्म में और विष्णु और शक्ति सूर्य गणेश इनका अधिवर। और शक्ति को ईश्वर मानते हैं वे शाक्त लोग, शक्ति का बीच में मंदिर करते हैं और सूर्य है, विष्णु भगवान है, गणेश है, शंकर है, ये चार तरफ होते हैं। ऐसे शैव जब अपना मंदिर बनाते हैं तो शिव जी का मंदिर बीच में होता है और पार्वती गणेश और सूर्य और विष्णु चारों तरफ होते हैं। ऐसे गणेश जी का मंदिर होता है तो गणेश जी मुख्य होते हैं, बीच में गणेश जी का होगा और चारों तरफ शिव शक्ति सूर्य विष्णु का होगा। तात्पर्य है कि ये पांच ईश्वर कोटि के देवता माने जाते हैं। इस तरह से पांच संप्रदाय है, वैष्णव है, शैव है, शाक्त है, गाणपत है और सौर है, ऐसे पांच संप्रदाय है। ये शास्त्रीय मत है। इसने इधर आते हैं तो फिर भगवान विष्णु और शिव इन दोनों की प्रधानता है। अपने इस उत्तर भारत खंड में तो विष्णु की प्रधानता है और दक्षिण में शिव जी की प्रधानता है। शिव जी की शक्ति की होती है, साथ में एक सदानंद कार्तिकेय जो शिव जी के बड़े लड़का है, छोटे गणेश जी है, बड़े वो है, उसको सुब्रह्मण्यम कहते हैं। वहां उनकी उपासना होती है तो शिवों की और वो सुब्रह्मण्य की उपासना उधर होती है, उसके मंदिर है। सुब्रह्मण्य में कई बड़े 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 मंदिर है, शक्ति के बड़े बड़े मीनाक्षी आदि मंत्र बहुत बड़े। अपने छोटे मंदिर तो एक छोटे से गांव में एक घर हो, इस तरह से है। उनके मंदिर इतने बड़े हैं कि जिस एक एक कोने में गांव का गांव बस जाए, इतने बड़े मंदिर है। बहुत काल हस्ती से शुरू होते हैं और कन्याकुमारी तक जाते हैं, बहुत बड़े बड़े मंदिर है। तो इनमें शैव और वैष्णव ये मुख्य है दो, शिव जी के शब्द मानने वाले, वैष्णव के मानने वाले। उन दोनों में भेद ही होता है कि भगवान शंकर को मानने वाले शैव होते हैं उनमें श्री शंकराचार्य की प्रधानता है। रमणाचार्य मतलब ये सब वैष्णव में आ गए। वैष्णव में पांच पद है ऐसे, वल्लभाचार्य महाराज है शक्ति का, इधर अपने विष्णु भगवान लगाता है। विष्णु भगवान के अवतार ही राम और कृष्ण को मानते हैं, इस तरह का वर्णन है। ऐसे शास्त्रों की मर्यादा है एक तरह की। इसके बाद हम यहाँ देखते हैं तो चारों संप्रदाय, चैतन्य महाप्रभु कोई भी संप्रदाय है उनके वो तो पांच होते हैं वैष्णव, नहीं तो उनके सिवा चार है। चार का विशेष प्रचार है, चैतन्य महाप्रभु का इतना प्रचार नहीं है, पीछे हुए हैं और बंगाल में विशेष होता है। हमारे यहाँ भगवान कृष्ण और राम ये दो मुख्य है। भागवत में अवतारों का आया है तो कलयुग में भगवान विष्णु भगवान के राम और कृष्ण ये दो अवतारों की मुख्यता कलयुग में मानी गई है। बंदे महापुरुष महापरम दोष रूप है, दोनों अवतारों की यह मुख्य कलयुग में बताई गई भागवत की मर्यादा है। इसमें फिर गीता जी की बात आती है तो गीता जी का कुछ गहरा विचार होता है तो उसमें कुछ अलग ही बात मालूम देती है। गीता पर टीका वैष्णवों की बहुत है और शैवों की बहुत है। भगवान शंकराचार्य महाराज की टीकाएं इनके मत के अनुसार बहुत सी टीकाएं हैं और वैष्णवों की बहुत सी टीकाएं हैं। तो गीता पर टीका देखी जाए तो बहुत है। दुनिया मात्र में जितने ग्रंथ हैं उन ग्रंथों के ऊपर भगवत गीता पर जितनी टीकाएं मिलती सैकड़ों हजारों, इतनी टीका किसी ग्रंथ पर नहीं है। आप ध्यान दें सुने और इसमें कमी हो तो बता दे मेरे को पीछे से, मैंने जहां तक अध्ययन किया है विचार किया है देखा है वो बात कहता हूँ। मनुष्य अपनी अपनी धारणा ही कहता है और क्या करे, जैसी जिसके उपजे वैसी कहे बनाए उसका बुरा अनुमान है, अभी कहां से लाए कहां से लाए। तो इस तरह की बात है। गीता की बहुत विलक्षण विलक्षण बातें मेरे समझ में आती है और वो इतनी विलक्षण है कि अभी तक समझ में आती ही चली जाती है। नई नई बातें आती है गीता जी में। गीता की टीका भी बहुत कई टीका है, हजारों टीकाएं गीता जी की है। मारवाड़ी में है, नेपाली में है और ये अपने मारवाड़ी में मेवाड़ी में है, ऐसी भाषाओं में जो साधारण अपने प्रांत की भाषा है इन भाषाओं में भी टीका है। श्लोकबद्ध है टीका, श्लोक श्लोक टीका, हजारों श्लोक है उसमें, श्लोकबद्ध भी टीका है। ऐसी विचित्र विचित्र टीका गीता जी में है। इतने होने पर कर्मयोग का वर्णन बहुत कम किया है। चैतन्य महाराज तिलक ने कर्मयोग शास्त्र माना है, उन्होंने कर्मयोग ही माना है कि गीता का प्रतिपाद्य विषय कर्मयोग है। शंकराचार्य कहते हैं, उनके मत वाले कहते हैं कि गीता में तत्व का वास्तव में अद्वैत सिद्धांत का ही वर्णन है। रामानुचार्य रामानाचार्य और विष्णु स्वामी ये सब कहते हैं गीता में द्वैत का वर्णन है, अद्वैत का नहीं। कर्मयोग की बात थोड़ी तिलक ने कही है, आधुनिक जमाने में टीका की है, उनमें श्री जयदास जी ने टीका है, उनमें तीनों को बरोबर बताया है। शैव मत में वहां पहले पहले कर्मयोग है, पीछे भक्ति योग है, पीछे ज्ञान योग है। वल्लभाचार्य और शंकराचार्य और रामानुजाचार्य शंकराचार्य ने रामानुजाचार्य के मत में पहले कर्मयोग है, फिर ज्ञान योग है, फिर भक्ति योग है। तो भक्ति योग और ज्ञान योग की विशेषता है और कर्मयोग की, तो तीनों ही मतों को देने वाली भगवद गीता है। इसमें विचार किया जाए तो मेरी बहुत मान्यता थी भी ज्ञान योग की ही प्रधानता है, ऐसे हमारी विचार की आई बात। परंतु फिर विचार करते करते एक बात विलक्षण आई, अचानक की बात, कि गीता में भक्ति का विशेष वर्णन है। अभी महाराज ने कहा ना श्री कपिलदेव जी महाराज की बात, तो उन्होंने भक्ति की विशेषता बताई, तो भागवत में भी भक्ति की विशेषता है। और भगवद गीता में भी भक्ति की विशेषता है। भक्ति सुलभ भी बताया है और श्रेष्ठ भी बताया। भक्ति योग सुलभ है और श्रेष्ठ है, उत्तम है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भक्ति जिसके हृदय में होगी तो उनके ज्ञान आप साप आ जाए, भरी आई कथा जबरदस्ती आ जाएगा। भागवत में भक्ति का वर्णन है, ज्ञान और वैराग्य दो बेटा है, तो भक्ति माँ हुई, तो भक्ति होगी वहां बेटा होगा ही, तो ज्ञान और वैराग्य आ जाएंगे भक्ति के कारण से। उस भक्ति का एक विशेषता से वर्णन है। शंकर मत में विशेष ज्ञान का वर्णन है। गीता में भी देखा जाए तो भक्ति की मुख्यता मालूम देती है। विचित्र बात बताई लोकेश में, द्विधा निष्ठा, ज्ञान योग और कर्मयोग की दो निष्ठा बताई। दो निष्ठा ये लौकिक है। लोकेश में द्विधा निष्ठा, द्वाभिमुख पुरुष हो लोक एक क्षण अक्षर एवं, ये दोनों लौकिक निष्ठाएं हैं, लौकिक बात है। और भक्ति को अलौकिक बताया, लौकिक नहीं है भक्ति। उत्तमा पुरुष तो अन्य, द्वाभिमुख पुरुष हो लोक और उत्तम पुरुष अन्य, वो अन्य है। निष्ठा दो ही है, ज्ञान की निष्ठा, योग की निष्ठा, योग विज्ञान और कर्मयोग, ये दो निष्ठाएं हैं। और भक्ति की है वो निष्ठा साधक की नहीं है, इसमें थोड़ा सा ध्यान दो। साधक की निष्ठा दो ही है, एक ज्ञान योग है, एक कर्मयोग है। दोनों मुक्ति के साधन बताया, दोनों को बराबर बताया पांचवें अध्याय में। तीन जगह विशेषता से आती है, दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में, पांचवें अध्याय में, थोड़ी 18वें अध्याय में शांति और ज्ञान योग वर्ण में, दो योगों का वर्ण है। इसमें भक्ति योग दो निष्ठा नहीं बताई अलग, लेकिन निष्ठा दो ही बताई है लौकिक, ज्ञान योग और कर्म योग। भक्ति है वो अलौकिक है, देखने में हमारे आता है तो संसार ये सबसे जड़ चीज अपना शरीर है और इसमें आत्मा चेतन है। जड़ शरीर जड़ पदार्थ है, तो जड़ पदार्थों को लेकर के भौतिक साधन कर्मयोग है और आध्यात्मिक साधन ज्ञान योग है। ऐसे दो निष्ठाएं हैं। तो दो निष्ठाएं साधकों की होती है और भगवान निष्ठ भगवान का भक्त होता है, उसकी लौकिक निष्ठा नहीं है, मनुष्यों की नहीं है, वो भगवान निष्ठ है। निष्ठा भगवान की होती है, भगवान के चरणों के सरे, तो निष्ठा में वो भगवान निष्ठ है, वहां निष्ठा भगवान की है। इस तरह का शास्त्रीय विभिषण है। हम लोगों के लिए कर्मयोग और भक्ति योग खास बात है। व्यवहार में हमारे कर्मयोग है और परमार्थ में अध्यात्म योग है। तो योग है ऊपर पर कर्मयोग और ज्ञान योग और भक्ति योग। भक्ति योग को सबसे श्रेष्ठ बताया है, उत्तम बताया है गीता में। वो निष्ठा ही अलग है। दो पुरुष लोग क्यों है कि हम जितने बैठे हैं इनके शरीर और पदार्थ ये जितने सब है, ये भौतिक पदार्थ है, और जो इनके आत्मा है वो आध्यात्मिक साधना है। एक भौतिक साधना कर्मयोग है और आध्यात्मिक साधना ज्ञान योग है, और भक्ति योग वो आस्तिक साधना है। तो तीन साधना है हुई, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। कर्मयोग लौकिक है, जो जड़ चीज है, इनको प्रधान भौतिक साधना को लेकर योग है। अध्यात्म योग जो बीच में आत्मा है, वो अध्यात्म विद्या है, वो अध्यात्म विद्या में ज्ञान योग की प्रधानता है। तो ये दो निष्ठा प्रधानता है। भक्ति योग लोग क्यों है, शरीर है, शरीर ही दो तो संसार में देखने में आते हैं और भगवान देखने में नहीं आते। इसका विचार का विषय बताया है, गीता के अनुसार विचार के विषय दो ही है, ज्ञान योग कर्म योग, और भक्ति योग श्रद्धा का विषय है, मान्यता है। संशय वही होता है जहाँ देखने में आता है, और संशय से ऊंचे उठते हैं तो वहां विश्वास से होता है। तो भगवान की भक्ति करते हैं तो उनमें विश्वास की प्रधानता है। ज्ञान योग कर्मयोग में विवेक की प्रधानता है और उसमें भक्ति की प्रधान विश्वास की प्रधानता है। ऐसा अर्थ ये नहीं विश्वास है वहां विवेक नहीं है, ऐसा नहीं है, और विवेक है वहां विश्वास नहीं, ऐसा भी नहीं है। प्रधानता विश्वास की प्रधानता भक्ति योग में है और विवेक की प्रधानता ज्ञान योग में है। ये दो योग निष्ठा बनती है। भगवद गीता के अनुसार कर्मयोग की निष्ठा है वो भौतिक निष्ठा है, उस भौतिक निष्ठा में बड़ी सुगमता से बात होती है। तो आज आपकी सेवा में एक विशेषता से बात करने की मन में आई है। भौतिक निष्ठा हमारे समझ में आ जाती है, वो इतनी विलक्षण कर्मयोग प्राप्त स्थानम तद्योगी गम्य थी, ऐसा बताया है। बताने वाले तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्मयोग विशेष थे। कर्मयोग की बात बहुत विशेषता से कही है। ज्ञान योग और कर्मयोग में कर्मयोग को श्रेष्ठ बताया पांचवें अध्याय में। वो कर्मयोग अपना साधारण अपने व्यवहार में ला सकते हैं। अब एक ध्यान दे रहा आप लोग सुने, कर्मयोग में क्या है कि अपने स्वार्थ का त्याग कर, अभिमान का त्याग कर और दूसरों की सेवा करना, ये खास कर्मयोग की बात है। ये कर्मयोग है। और जो कर्म काम करते हैं वो कर्म है, वो योग नहीं है। कर्म के दो भेद, एक कर्म होता है एक चेष्टा होती है। जैसे वृक्ष हिलता है, कपड़ा सुखाया हिलता है, वो क्रिया है, उसमें कर्म है। क्रिया तो है मात्र, कर्म योग नहीं है। लोग हम लोग काम करते हैं वो कर्म है, वो भी योग नहीं है। निष्काम भाव और अहंकार का त्याग करें तब कर्म योग होता है। कर्म योग निष्काम भाव की मुख्यता, भक्ति योग में विश्वास की मुख्यता, ज्ञान योग विवेक की मुख्यता, ये बात रहती है। वो कर्मयोग का अनुष्ठान सुगम भी बताया है और ज्ञान योग से श्रेष्ठ बताया है, ये बात नई गीता जी की देन मालूम होती है। और जगह ज्ञान योग को श्रेष्ठ बताया है, परंतु गीता में ज्ञान योग से कर्मयोग श्रेष्ठ बताया है। कर्मयोग की साधना एक तरह से मैं बताता हूँ, जो शास्त्रों से है, संत महात्माओं से सुनी है, गीता में आई है, उनके अनुसार मैं बात एक कहता हूँ, वह लोग सुने। व्यवहार में परमार्थ बता दिया, ये गीता की विशेषता है। दूसरे तो छोड़कर अंत में जाओ, जंगल में चले जाओ, साधु बन जाओ, तब कल्याण होगा साधना करने के लिए। और कर्मयोग में गीता कहती है गृहस्थ में है रहते हैं भाई, गृहस्थ गृहस्थ है, भाई भाई है, बहन बहन है, अपनी अपनी जगह रहते हुए काम करे तो व्यवहार करते हुए थे, खेती करते हुए, व्यापार करते हुए, रक्षा करते हुए, शिक्षा देते हुए, सेवा करते हुए परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ब्राह्मण है वो शिक्षा दे, अपने कर्म का पालन करे, क्षत्रिय है वो रक्षा करे, उनका पालन करे, कर्म करे करे, वैश्य है वो व्यापार करे, अपना कर्म करे, और शूद्र है वो सेवा करे। इन चारों की सेवा करने से परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाती है। व्यवहार को शुद्ध करने से जो आप घरों में रहते हैं, वो रहते हुए ही संसार का व्यवहार करते हुए ही परमात्मा की प्राप्ति कर रहे। भगवद गीता के तीसरे अध्याय के लिखते समय ये बात हमारे समझ में आई। वर्षों से गीता पर विवेचन में करता हूँ, कहता हूँ, लिखा भी है, पर जब गीता भी टीका लिखने लगे तो कई बातें नई नई मिली, तो वहाँ एक विशेषता से यह बात मिली। परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए किसी को भी नया काम करने की जरूरत नहीं है। जो काम करते हैं उसी काम को निष्काम भाव से किया जाए तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो वो बात एक बताई जाती है, व्यवहार में परमार्थ, खाना पीना देना देना आप व्यवहार करता, ये व्यवहार में परमार्थ तत्व की प्राप्ति हो जाए, वो एक तरीका है। तो वो एक तरीका बताता हूँ। भाई बहन ध्यान देकर के सुने, एक कहानी है। कहानी तत्व की बात कोई कहानी कह दी जाए कथा, तो बात समझ में सुनता है, आती है, याद भी रह जाती है, और विवेचन किया जाता है। वो पढ़े लिखे के तो समझ लेते हैं, हर एक आदमी के कोई पल्ले नहीं पड़ता विशेष। तो एक कहानी की बात है, एक सेठ के सात बेटा थे, सातों बेटा थे, उनका ब्याह हो गया। छोटे बेटे का ब्याह सबसे पीछे हुआ, बड़ों के लड़का लड़की भी हो गए, और वो छोटी बहू आई घर पर, तो आपस में उनकी लड़ाई होती है। सेठ के घर में एक बात विशेष थी, धन बहुत होने पर नौकर रख लेते हैं। उसमें ये विलक्षणता थी कि नौकर काम नहीं, कोई कोई नौकर रहते थे, प्रायः काम स्त्रियां ही किया करती थी। तो छह स्त्रियां थी, एक सासू थी, एक नई बहू आ गई, आठ हो गई। तो बारी बारी रसोई बनाते, बारी बारी रसोई बनाते, आज उसकी बारी है तो वही बनावे, हमारी बारी में तेने बनाई क्या, तेरी बारी में तुम बनाओ, बच्चों की माताएं रही बड़ी बड़ी वे भी बनावे। तो रसोई में बालक और नजर, बालक बाहर ही रहे, माँ है रसोई बनावे, स्नान करके शुद्ध कपड़े पहन करके पवित्रता से रसोई बनावे। ऐसे बनाते थे तो उसमें आपस में खटपट होती थी, छह थी बहुआ वे आपस में खटपट करती, काम करने के लिए व्यवहार में हरेक मैं काम क्यों करूं, तुम काम करो, पदार्थ वो लेने मैं ले और काम तुम करो, खटने में परिश्रम करने में तुम करो, चीज वस्तु में हम ले, आराम हमारे को मिले, इस बात को लेकर घर में लड़ाइयां होती थी, इस बात को लेकर आज भी लड़ाइयां होती है। तो छोटी बहू आई, उसके बाप ने बड़ी समझा करके भेजा कि बेटा वहां जाओ तो अपने घर में काम धंधा विशेष करना और सबका आदर करना, तुम छोटी हो, सास से छोटी तो सब है पर तुम बहुआ में भी छोटी तुम हो, इस वास्ते तुम्हें बहुत नम्रता से सबकी सेवा करना, ऐसी बातें बहुत अच्छी पढ़ा दी थी, और सबको सुख कैसे पहुंचे ऐसे करना। ये संसार समुद्र है, इसमें सेवा करने से उद्धार हो जाता है और लेने से पतन हो जाता है। संसार का समुद्र है ना संसार, तो समुद्र का जो लिया जाए यूं ले जाए तो डूब जाता है, लातो से आतो से मारता तो है तो पार हो जाता है। तो स्वार्थ का त्याग करके सेवा करने से जीव का उद्धार हो जाता है। ये बातें बताई, तो स्वार्थ त्याग क्या, कि गहना है, कपड़ा है, रुपया है, चीज वस्तु है, ये तो दूसरों को देना, अरे काम धंधा है, रसोई बनाना है, जल भरना है, झाड़ू देना है, बर्तन मारना है, ये सब काम लेना ये अपने करने का है, आराम दूसरों को देना का है, ऐसी बात पिता ने सिखाई थी। वो आकर देखती है तो जेठानियां जेठानियां है, उसे देवरानी तो कोई है ही नहीं, देवरानी तो वो एक ही है, तो ये लड़ती है आपस में। तो उसको बड़ा इंसल्ट आया कि पिताजी ने कहा कि काम करना और ये काम के लिए तुम करो, तुम करो, ऐसा करती है। तो उसने क्या किया, एक दिन जल्दी उठ करके और शुद्ध कपड़ा पहन कर धोया हुआ साफ और पवित्र से जाकर रसोई में बैठ गई, रसोई करने लगी। सासू ने देखा तो उसने कहा कि बहू काम करने वाली छह जेठानियां हैं तेरी, तेरे को काम करने की क्या जरूरत है, तू क्यों आई है, कि माँ जी मेरे को लाभ नहीं चाहिए क्या, क्या लाभ वही ले मैं अकेले नहीं लू क्या, ये बात समझ में नहीं आई, लाभ की क्या बात है, रसोई करनी पड़ती है, खटना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, कहते माँ जी इसमें बहुत लाभ होता है, विशेष लाभ होता है इसमें। तो पूछा इसमें क्या लाभ होता है, क्योंकि अभी वक्त नहीं है, रसोई बना ली, सबने भोजन कर लिया, भोजन करने के बाद सास ने पूछा क्या बात है, तो कि देखो माँ जी आप ब्राह्मणों को भोजन देते हो, साधुओं को भिक्षा देते हो, गरीबों को भी वस्त्र है अन्य बांटते हो, क्यों बांटते हो, कहते इससे पुण्य होता है, अपने खाने से तो मिट्टी हो जाती है, जैसे भोजन कर लिया जाए रोटी बनाकर तो मिट्टी हो जाती है, और वे दाने खेत में बो जाए तो खेती हो जाती है, और खाने से रेती हो जाती है, कितना फर्क है। तो दूसरों की सेवा करने से आदमी का उद्धार होता है। अब सेवा में क्या करूं, तो हम सेवा ले क्यों, मैं भी कर सकती हूँ, रसोई बना सकती हूँ, मेरे को आता है, तो रसोई बनाकर भोजन कराने से जो दूसरे साधुओं को ब्राह्मणों को भोजन करने से पुण्य होता है, तो घर वालों को भोजन करने में पाप होता है, लेकिन पाप की क्या बात है, इसमें पुण्य की कौन सी बात है, ये तो घर के आदमी है, तो घर की सदा ही रसोई बनाकर खाते हैं, कि घर के आदमी तो है परंतु परिश्रम करके मैं रसोई बनाती हूँ तो मेरे को लाभ ज्यादा होगा ना, नहीं तो मैं नहीं बना सकती, समूह बढ़ावे में सातु ही बनावे तो लाभ होगा, तो मैं लाभ से वंचित क्यों रहूं, कि तू अभी क्यों बनावे, अभी द्विरागमन होता है, तो मुकलावे आई है तो अभी तेरे को नहीं, अब दोबारा जब आवे तो तू रसोई बनाना, अभी तेरा का लाड रखते हैं, कि माता जी ये लाड नहीं है, ये तो यहाँ यहाँ ही लाड है, वास्ते परलोक में तो नहीं होगा, मुफ्त में खावे या दूसरे रसोई बनावे तो मैं ऐसा पुण्य को खेचू, मैं आप सेवा करूंगी। कहते इसमें जो भोजन में रहे में पुण्य होता है। माता जी अन्न जल तो आपका, सब बर्तन और रसोई आपकी, पर रसोई मैं बनाऊ वो तो मेरे को पुण्य होगा कि नहीं? जैसे ब्राह्मणों को दूसरों को भोजन कराने से पुण्य होता है तो घर वालों को भोजन कराने में पाप होता है। कि पाप क्या है? तो खटकर परिश्रम, इसमें भगवान की प्राप्ति जल्दी होती है। क्यों? कि सेवा करती है ना वो, तो सेवा करने वाले को भाव बहुत लाभ होता है। सेवा लेने वाला का तो पुण्य खत्म होता है और सेवा करने वाले को पुण्य प्राप्त होता है। इस वास्ते ये मैं तो बनाऊंगी। बात ऐसी बढ़िया बताई उसने, सास की भीड़ में बैठ गई कि छोरी छोटी है परंतु बुद्धि बड़ी थी। तो दूसरे दिन महाराज जल्दी स्नान करके माता जी बैठ गई रसोई बनाने के लिए। उस जेठाने सब भगवान कहे, माता जी आप रसोई क्यों बनाओ? हम आपके घर में 7 जन है, आपकी बुआ और आपकी बेटियां, रसोई आप बनाओ खुद। कि जाओ जाओ तुम जाओ रसोई बनाओ। माता जी क्या बात है? कहे भोजन कराने से पुण्य होता है, भगवान जल्दी मिलते हैं। इस वास्ते भगवान जल्दी मिलते वो मेरे को चाहिए। तुम तो छोटी हो, कई दिन काम करोगी, हम तो बूढ़े हो गए मरने वाले हैं, तो ये काम कब करेंगे, सेवा कब करोगे बताओ, मर जाएंगे हम तो। अब तो पुण्य करना, लोगों को उद्धार करना, जो अपना कल्याण करना है, इस वास्ते रसोई बनाना तो मेरा ही काम है। सबने सुना, सारे बात ठीक कहती है। अब वर्षों में बात में आपस में हुई, पहले तू कर तू कर तू कर गया, अब मैं करूं मैं करूं मैं करूं। अब जो पहले जाकर बैठ गया रसोई बनावे, अब वो बैठ जैसा, आज तो मैं आ गई, पहले मैं ही बनाऊंगी। दूसरे दिन दूसरी आ बैठी, छोटी बहू और आ बैठ गई के साथ मैं बनाऊं, तो आपस में लड़ाई होने लगी। पहली लड़ाई थी तू कर तू कर तू कर मैं, अब मैं करूं मैं करूं मैं करूं, लड़ाई हुई। तो विशेष ही विष मऊ सदम, विष गई दवाई विष होता है, तो लड़ाई की दवाई लड़ाई, तू कर तू कर लड़ाई हो तो मैं करूं मैं करूं, लड़ाई मिट जाती है। ऐसे होने से लड़ाई होने लगी। तो एक दिन सेठ ने कहा कि तू नरो मत, अपने ऐसा करो भारी बांध दो। अच्छा भारी बांध दो सर, तो भारी बांधी, तो भारी बांधी, पहले तो 6 बारी हुई, अब 8 बारी हो गई। एक छोटी बहू आ गई, एक सास, 8 बारी हो गई। तो 4 दिनों से रसोई बिगड़ गई, काम पड़े। तो छोटी बहू ने समझा कि हमारे तो पानी बहुत कम आती है, ये कमाने की चीज तो बट गई हरे हिस्से में। तो उसने बुद्धिमानी करी, घर में पुरानी एक घट्टी पड़ी थी, पति को कहा कि एक बोरा ले आओ, एक बोरी ही गेहूं जो 2.5 मन की होती है ले आओ। मंगा लिया, उनको साफ करके और हाथ से पीसा, हाथ से पीसा, चक्की चलती है सुना। और उसी दिन उसकी बारी, उसने भोजन बनाया तो लोग कह रहे भाई आज तो फुलके बड़े स्वादिष्ट हुए, क्या बात है? कहते हाथ का पीसा हुआ आटा है, चक्की में पीसा जाता है, जोर से वो हो जाता है गर्म, गर्म गर्म बोरी में रख देते हैं तो हीर जल जाता है। अरे हाथ से बताया ठंडा आटा होता है और उसमें शक्ति ज्यादा होती है, स्वाद में मिठास भी ज्यादा होता है, तो आज फुलके अच्छे बने। अब ऐसे हाथ से परिश्रम किया, आटा पीसा, स्वयं रसोई बनाई कि सबको कैसे सुख हो। अरे सुख देने सुख होते, दुख देने दुख होते, जितना सुख दिया जाए आपको सुख मिलेगा। खेती में बाजरा बो तो बाजरा होता है, और जिसे ज्वार बो तो ज्वार होते है, और मक्का बो तो मक्का होता है, सीधी बात है। तो जब सेवा के लिए दूसरों का हित के लिए काम करेगा तो खेती हो जाएगी, उसको बड़ा आनंद मिलेगा और मुक्ति हो जाएगी। ऐसी बातें हुई महाराज। अब भगवान सब गए, सब सब बड़े उत्साह से काम करने लगी। उस दिन बढ़िया रसोई हुई, क्योंकि तुरंत का ताजा आटा, बाजरी का आटा तो 2-3 दिन में खट्टा हो जाता है, गेहूं का आटा तो कई दिन चलता है, परंतु पुराना होने पर ताजे आटे जैसे तो रहता नहीं, ये तो कायदा ही है। तो ताजी रसोई बनाई उसने, अरे उत्सव में बनाया जाए, बनाने वाला उत्साह से बनाता है तो वो रसोई बढ़िया होती है, अरे रोता जाए और पोता जाए तो उसकी बढ़िया रसोई होती, क्योंकि उनमें दुख होता है उसको बनाने में, दुखपूर्ण चीज दी जाए उसका पुण्य नहीं होता है। गाय का दूध हम दूहते हैं तो उसको छान लेते हैं, कहते छानते क्यों हो, गाय का दूध पी तो छानते क्यों, छानते इस वास्ते कि गाय का रुआ ना आ जाए उसमें, गाय का रुआ आए तो पाप लगेगा। कि शेरों में दूध पी जाते हो, दूध गाय प्रसन्न हो गए पावस्ते तब होता है, रुआ एक भी टूटे दुख होता है। तो गाय को दुख दे करके लिया जाए वो ठीक नहीं, आपसे आप रुआ झड़ जाए वो भी हमारे पीने में नहीं आवे, नहीं तो हमारी दुर्दशा होती है। तो गाय का छान कर पीते है तो प्रसन्नता से लिया हुआ चीज होती है दूध के बराबर, और दुख दे लिया वो खून के बराबर। आजकल गायों को सुई लगा कर दूध है वो खून की तरह, गाय का खून बड़ा भारी पाप है, उसमें ऐसा दूध लेना नहीं चाहिए। और देने में ही आप लोग घरों में ऐसा कभी न करें, गांव में तो कम है ऐसी बात, शहरों में ऐसी बात प्रचलित होती है, गांव में भी सीख जाओ। आजकल ये जमाना है बूट का, तो शहरों की चीजें भी गांव वाले सीख गए तो गऊ को दुख नहीं दे रहा, प्रसन्नता से आपसे आया दूध बरोबर मांग के लिया पानी, अरे खेचा ताणी खून बरोबर, ये संतों की बाणी दहेज में आदो में जो आपसे आया दूध बरोबर, दूध बरोबर, अरे मांग से इतना हम तो लेंगे, इतना पैसा लेंगे तब हम तो अपना बेटा ब्याहेंगे, पानी हो गया कसा कसी कैसा इतना नहीं, हमारा सगाई कर लो हमारे छोरी है कितना खर्चा करेगा, 20-25 हजार कर दे, 50 हजार क्या था वो कुछ हम लिए ही नहीं, 50 हजार छोरे की कीमत बधे सोफा में, थोड़ा लीलाम हो रहा है, अधिक दे तो छोरा ब्याहेगा, तो छोरा लीलाम करना है बेचने के लिए है, आपकी संतान की बिक्री करते हो, ये बिक्री है महाराज, बोलते हैं पहले कितना लेंगे हम तब ब्याहेंगे, तो ये बड़े पाप की बात है। तो दूसरे को दबा कर देना ठीक नहीं, प्रसन्नता से दे वो ले ले, अपने पुत्री के लिए जो दहेजा देता है अपनी खुशी से, हमारे तो भाई कुमकुम कन्या ब्याह करेंगे, लड़का था कुमकुम कन्या, कुमकुम रोली और मोड़ी और बेटी, इतने मामा तो काम है, तो त्याग करने से प्रेम रहता है, भूखा रे भूखा पावना वे मांगे रे दे नहीं, और धायो के धाया पावना वे दे रे ले नहीं, वे देना चाहिए वो लेते ही नहीं, तो दोनों धाया हुआ है, अरे भूखा वे मांगे इतना दो सा इतना दो कैसा इतना नहीं कसा कसी करे, तो भूखे मरते हैं बेचारे, चाहे लखपति हो चाहे करोड़पति हो, है तो भूख की भूख ही, खाऊं 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 ये तो भूख हो तो उठा भूख है। तो इस तरह से वो छोरी ने काम किया, अब आपस में से बात होती थी, चक्की पीसनी शुरू कर दी, रोजाना जितना आटा लगे पीस कर दे दे। सासू ने पूछा कि बहू क्या करती हो तुम, हमारे को पैसों की कमी नहीं है, चक्कर चक्के में पीस करके आ जाता है, सब लोग शुरू करते हैं, या तो तुम क्यों पीसती हो, परिश्रम पड़ता है कि माँ जी कोई रसोई बनाओ आटा तो मेरे चलेगा ना, तो सबके भोजन तो मेरे आटे से बनेगा, तो वो पुण्य तो मेरे को होगा ना रोटी का। तो क्या किया था दूसरे दिन सासू जाकर बैठ गई पीस लिया, अरे माँ जी क्या कर रहे हो आप, बूढ़े हो आप सब, कि बूढ़ों को मुक्ति नहीं चाहिए क्या, बूढ़ों को तो मुक्ति पहले चाहिए, क्यों पहले मरने वाले हैं। अब वो पुलिस लगी, अब दूसरे ने पूछा कि माँ जी आप क्यों पीसते हो, क्या छोटी छोरी आई है ना या सबको लूट कर खा जाएगी, कि क्या लूटती है, क्या क्या आपका पुण्य लूटती है, रसोई ये बनाती है और महाराज पीस दी आटा पीस दी है ये बनाती है तो इसको लाभ होगा, इस भोजन का सबका पुण्य, आटे का पुण्य तो एक अकेली ले देती है। सबने सुना जेठानियों ने, तो अपने पति से कहा लाओ सा चक्की लाओ, घर घर में घटी आएगी अपने कमर कमरे में, सब पीसे दो दो ढाई से पांच से पीसे दो आटा हो गया, कि इतना आटा क्यों पीसते हो, कैसा हमारे मुक्ति चाहिए कल्याण चाहिए, इस वास्ते हम तो पीस दिए, जो भोजन करेगा आटा तो हमारा ही चलेगा, इतने आटे क्या करे क्या करे, आप जानो तो बीज बिक्री कर दो हम तो आटा पीसेगी, कि आटा पीसने से क्या होता है। तो सूठी ने कहा देखो जो परिश्रम करती है उसके बालक बड़ा सुगमता से हो जाता है, और परिश्रम नहीं करती उसके बड़ी कष्ट होता है, और परिश्रम पसीना आ जाता है उसके रोग नहीं होता है, रोग सब खत्म हो जाते हैं, बैठे रहे आराम करे उसके रोग ज्यादा होता है। आप देखो खेतों में बिस्तरों में काम करती है, अच्छा अच्छा जवान का हाथ पकड़ कर छुड़ाना मुश्किल हो जाए, ऐसे आप देखो विष्णु ने काम करती है, क्योंकि काम धंधा करती उसे बल आता है, बल आने से सुख होता है, सब घरों सुगमता से होता है, इस वजह से चक्की पीसने से बालक सोना होता है, सब तरह आराम होता है, शरीर ठीक रहता है, निरोग होता है, पसीने में रोग निकल जाता है। तो सब आठों तक चक्की पीसे, उसने देखा कि ये बात भी गई, अब क्या करें, तब रसोई बना लेते भोजन कर लेते, एक काम करने वाली आती वो वहां बैठ के राख का कुंडा लेकर के और जो बर्तन है उनको मांजती, थाली मांजती, कटोरी मांजती, गिलास मांजती, तो वह मांजते थे। उससे नजीक में आकर छोटी बहू बैठ गई, जो कटोरी थाली अब गिलास वो मांजे अपने। सास ने कहा तू क्या करती है, मामूली पैसे लगते हैं, उसमें रोटी दे देते हैं, भोजन दे देते हैं, थोड़ा महीना दे देते, इतने काम हो जाता है। तू ये स्वार्थ करती है कि मैं आटा पीसूं, तू भी नहीं, तेरा गहना घट जाएगा, कपड़े खराब हो जाएंगे, कितना नुकसान होगा। बढ़िया लोग हम तो समझते हैं ना, तू ऐसा क्यों करती है। कहते माता जी ये तो ठीक है, गहना घसेगा और कपड़ा भी मैला होगा, परंतु जूठ उठाने का बड़ा महत्व है। आपने सुना नहीं, महाभारत में पांडवों ने यज्ञ किया तो पतला भगवान कृष्ण ने उठाई, तो पतला उठाना बड़ा ऊंचा काम है। सेवा में जितना छोटा नीचा काम किया जाए उसकी महिमा बहुत ज्यादा होती है। इस वास्ते ये जूठे मेरे को मांझने दो। सास से बात बड़ी बढ़िया कहती है, ये भगवान कृष्ण जो यज्ञ में सबसे पहले पूजन किसका हो, वेद व्यास जी भी महाराज मौजूद थे, बड़े ऋषि भी मौजूद थे, परंतु सहदेव ने कहा पहले कृष्ण भगवान का पूजन हो जाए, तो पहले कृष्ण भगवान का पूजन हुआ। पूजन सबसे पहले हुआ, पीछे दूसरा काम हुआ, और पतला उठाना ब्राह्मणों के चरण धोने का काम भगवान कृष्ण ने लिया। तो छोटा काम होता है वो बड़ा होता है, काम में जितना छोटा है उतने बड़ा, जितने बड़ा काम उतने छोटा। जैसे बड़ा काम व्याख्यान देना, शिक्षा देना, ये बड़ा काम है, पर सबसे नीचा काम है ये। अपने में अभिमान आता है, मैं इनको बता दूं ये सब बेसमझ है, मैं समझ बता दूं, तो जो बेसमझ समझता है वे तो समझदार है, त्यागी है, और अपने को समझदार मानता है वो अभिमानी होता है, उसको तत्व ज्ञान नहीं होता। मैं समझाऊं तो मैं ठीक तरह समझाऊं, तुम अकल नहीं हो, तुम स्मारा नहीं हो, तो ये अभिमान होता है। तो इसमें काम सुनने वाले को जो लाभ होता है, सुनाने वाले को लाभ, अभिमान आता है, लाभ अभिमान में बह जाता है। इस वास्ते सुनने को लाभ ज्यादा होता है। सुनने वाले नहीं समझते हैं तो वहाँ वक्त रे वही तत्जागी श्रोता यत्न बुद्ध थे। जहाँ श्रोता को ज्ञान नहीं होता वहाँ कहने वाले की जड़ता है। सुनने वाले दोनों कान सामने करके बैठ गए, अब समझा आप सकते नहीं, अरे कहते हैं तुम मूर्ख हो समझते नहीं, अरे मूर्ख का मुंह स्वयं बने हुए बाबा न्यारे क्या बात कहते हो, आप समझाओ, अरे समझा तो सकते नहीं कि तुम मूर्ख हो। तो अभिमान ज्यादा होते हैं, बड़े काम में अभिमान होता है, पत्र उठा में चरण धोने में अभिमान ही होता है, अभिमान हम ऊंचे बैठे हम यू करे। संस्कृति मूल शूल प्रद नाना, सकल शोक दायक अभिमाना, अभिमान संपूर्ण शोक देने वाला है। इस वास्ते अभिमान से बचो। तो ऊंचा काम होता है अभिमान बढ़ता है, छोटे काम अभिमान दूर होता है, और बड़े बैठे रहे तो आलस बढ़ता है, प्रमाद बढ़ता है। ज्यादा से क्या ज्यादा हो गया, अभिमान करने से ही मोटा हो जाएगा, तो उठाने वाला रोएगा जीव को, लाश भारी बहुत ही। अगर काम करते रहे इतना ऊंचा नहीं भूले तो बेचारे उठाने वाले सुख पावेंगे, मरना तो पड़ेगा भाई एक दिन, तो क्यों बेचारे दूसरों को दुख दो। पहले तो काम करते नहीं बैठे हुक्म चला अभिमान करे, एक बेचारे मरने पर भी दूसरों को दुख दे, नहीं तो अपने शरीर अच्छा रहे, मरने वाले भी ले जाने वाले भी सुख से ले जाए। तो काम करना अपने हाथों से स्वयं, अब चक्के चले थे क्या किया उसने विचार किया, अब बर्तन मांगने का, तो बर्तन मांगना अब उनको सासू को पूछने की जरूरत नहीं रही। अब सबने समझ लिया कि यार छोटी बहू करे वही बढ़िया काम है, तो अपने वही बैठ गई था, हम भी मांझेगी बर्तन गिलास और अब खड़ी जाए। जब भोजन करके उठे तो किसी हाथी किसी के हाथ ले गए कटोरी, किसी के थाली, किसी के गिलास, ये मांझने गए जाए, लड़ाई होने लगी, खुशा खुश होने लगी। तब सोच की बहू ने एक दिन कहा देखो माँ जी ये जो थाली है तो इसमें मेरा हक लगता है, मेरे पति भोजन करते हैं तो मेरा हक लगता है, ये बर्तन मैं मान लूंगी, जाए जा तेरा पति पीछे है मेरा बेटा पहले, सर मैं मान लूंगी बेटा पहले है। ऐसे सास बहू लड़े, उसमें लड़ाई होने लगी, तो हरेक मानने लगी ऐसे मत करो, तो भारी बांध लो एक एक दिन मांझो अपना, कि मानने वाली इनको हटाना नहीं, इसके बिचारे की जीव का नष्ट नहीं करना, अच्छा बता देंगे। एक दिन देखा महाराज जो वो छोटी बहू जल्दी उठ करके और कुआ था घर में पहुंच गए, पानी भर गया, अब वो पानी भरने वाला नौकर आया, वो हाथ पर धारे बैठा है, अरे बैठा कैसे है, तो क्या करूं, पानी भरो, तो महाराज सब पैसा भरा हुआ, सब बर्तन द्वारा भरे हुए क्या भरू में, अरे क्या हुआ किसने भरा? शेर ने कहा भाई किसने भरा पानी? तो अपनी स्त्री के पास पूछा कि कौन है, छोटी की बहू को पूछो। छोटी की बहू ने पूछा कि तुमने भरा? कि देखो भोजन का पुण्य होता है उसे जल का पुण्य ज्यादा होता है। भोजन तो एक बार दो बार करे, पानी कितनी बार पिए, कुल्ला ही करे, हाथ धोए पैर भी धोए, तो पानी का पुण्य ज्यादा होता है। आपने बैसाख बातों पढ़ा नहीं, सुना नहीं आपने कितना जल का पुण्य है? इस वास्ते जल भरने का बड़ा पुण्य होता है, कितनों को तृप्ति होती है, ये ज्यादा तृप्ति करने वाला है। ऐसी बात है, हाँ पानी का पुण्य बहुत ज्यादा होता है। दूसरे दिन सेठानी पाने लगी, ऐ बूढ़ी माँ कभी गिर जा गिर पड़ोगी, हाड़खा बूढ़ा है खेचने में फला हो जाएगा, कि फला हो जाओ उसे गिर पड़ो, मुक्ति तो जल्दी होगी ही, क्योंकि इतने दिनों को सब जल की तैयारी कर दे, बाहर से कोई अब हाथ पिएगा, हाथ धोएगा, कोई पानी पिएगा, अन्न तो बहुत कम आदमी पीते, पानी जो हरेक पीते भाई, पानी का पुण्य ज्यादा होता। अब सब दूसरी बहू आई, माने सासु आई, बहू आई, लड़ाई होने लगी, लड़ो मत। सेठ आया कि क्या कर रही हो, हमारे नौकर है वो क्या काम करेगा, जल तुम ही भरती हो तो जाकर नौकर बैठा रहता है, ऐसे ही आता है निगम बैठा है, पानी तुम भर रही हो, नौकर है अब नौकरी लगती है। तो वो दौड़ कर गई सासु के पास, माताजी हमारी बात तो सुनो, ये पिताजी आए, बाप जी आए हैं, पिताजी ये कह रहे हैं कि नौकर से काम लो, तो ये हम तो जल तो भर लेती है, तो पिताजी को कहना कि नौकर का त्याग नहीं करे, बेचारे घर का धंधा घर का काम कैसे चलेगा, तो इसको छुट्टी मत देना और काम दुकान में लगा लो, और कोई काम लगा लो। सासु ने अपने पति से कहा कि ये छोटकी बहू कहती है, सब घर में आदर हुआ छोटकी बहू, छोटकी बड़ी तेज निकली है, देखते तो छोटी बड़ी तो बहुत बड़ी है, किस बात की, इसको नौकर को हटाना नहीं है। अच्छा बहू कहती नहीं हटाएंगे, बहू का आदर हो गया। अब महाराज बहुत बहू देखे तो अब चलो बर्तन मांगने वाली सब हो गए, भोजन कराने वाली हो गए, तो एक दिन जल्दी उठ करके झाड़ू दिया अपने कमरे में, दूसरों के बाहर बाहर जितने सब झाड़ू दिया, साफ कर दिया। सास ने पूछा बहू झाड़ू क्यों देती हो? कि झाड़ू देने का पुण्य बहुत है ज्यादा, आपने सुना नहीं सबरी थी नहीं भगवान के गए वहां, मोटा मोटा मुनि जना आश्रम मुखी ने सबरी ने घेर जाए, सबरी रहते हैं, सबरी क्या करती थी, ऋषियों की जो पंपा शुरू जाने वाले डगर बुहा देती, कंकर कांटा दूर कर देती और बालू बिछा देती, तो भगवान पहले उसी घर आए। उस वास्ते झाड़ू देने का बड़ा महत्व है, भगवान की आदर है, ऐसा बात है। हाँ अब भरा है कोई झाड़ू दे, कोई झाड़ू दे, अब झाड़ू देने वाला आदमी नौकर बैठा है, तो ये नौकर बैठा निकमा झाड़ू दे, झाड़ू तो हम दे रहे थे, तो नौकर को नौकरी छुड़ाना नहीं है, इनके बालकों का पालन कैसे होगा, छोटी बहू सलाह देती है, तो छोटी बहू की बात सासु भी मांगे माने और ससुरा भी, घर वाले सब उसका आदर करने लगे, तो बड़ी बुद्धिमती है, बड़ी समझदार है ये, तो अब वो झाड़ू देने का काम भी अलग अलग करने लगी, तो काम जाने लगे, अब क्या करे। ऐसे सेवा से अंतःकरण शुद्ध होता है और दूसरों पर बड़ा अच्छा असर पड़ता है, तो त्याग होता है अभिमान का, अभिमान का त्याग और आराम का त्याग, काम करेंगे तो आराम थोड़ा ही रहेगा, अभिमान नहीं रहेगा तो अभिमान रहे थे निर्गो निर्ममो निरहंकार से शांति मधि गच्छति, निर्ममो निरहंकार सम दुख स्वकर्षण, अहंकार धर्म ज्ञान योग में कर्म योग में भक्ति योग में अहंकार के त्याग बताया है, तो अहंकार कैसे मिटे, सेवा करने से मिटा, तो ये बातें हुई महाराज। तो आप में प्रेम बढ़ा, जहाँ प्रेम बढ़ता है वहां जहाँ संपत्ति संपत्ति नाना, जहाँ कलत विपत्ति नाना, तो संपत्ति बढ़ी धन बढ़ा। शेर ने कहा धन बढ़ रहा है क्या बात है, दुकान में बहुत लाभ हो रहा है, तो क्या किया जाए। शेर ने कहा भाई गहना घड़ाओ, ये स्त्रियों का जो गहना होता है ये श्रृंगार के लिए नहीं है, मान लिया श्रृंगार के लिए, परंतु गहना होता है वो स्त्री का धन होता है, उस धन पर पति का भी अधिकार नहीं, ससुरों का भी अधिकार नहीं, ना माँ बाप का अधिकार, गहना है वो अधिकार उसी का ही होता है, वो मालिक होती है गहनों की। इस वास्ते बाप की कहते हैं गहना कितना घालोगे बताओ, गहना कितना दोगे, अरे बाप भी देता है गहना, वो स्त्री का धन होता है। तो शेर ने क्या किया कि गहनों की जोड़ी बनाई, तो सात जोड़ी बनाई और आ पोटली उठा कर दो, एक एक दो दो जोड़ी सब दे दो, छठ से जोड़ के सब घरों में गणा दे दिया, गणा दे दिया। लोग सास ने बोला कि आप गहना क्यों देते हो, इन्हें क्या बात है, गणित कमी थोड़ी है, कमी नहीं, संप्रे कारण से हमारा धन बढ़ा है, धन बढ़े तो स्त्रियों का धन भी बढ़ना चाहिए, स्त्री धन तो यही है जो गहना है स्त्री धन है, क्या देगा साहब, तो सब देख चले गए। तो छोट की बहू फौसी बड़ी जेठानी गई, वहां जाकर गहना रखा कि ये गहना आप लो, कभी वो गहना दे दिए ससुर जी ने, सबको दिया है, सबको तो दिया है, परंतु मैं क्या करूंगा गणों का, कहते गणों का देखो आपने छोरा है छोरी है, ब्याह करोगे तो गणों की जरूरत है, मैं तो अकेली हूँ, मेरे तो गणों में खर्च नहीं है, क्या करूँ, पिताजी ने दिया गहना वो भी हमारे तिजोरी भरी पड़ी है, वो गहना पहनने को मैं तो नहीं मगत मिलती, अधिक देर हम करूंगा क्या, वो न किया। सब जेठानियों के एक एक जोड़ी सब जेठानियों घर में दी आई, सास ने पूछा कि बहू ये तू क्यों देती है, गहना तो सबको दिया है, कोई तेरे अकेले भी थोड़ा दिया है, कि माता जी दान पुण्य क्यों करते हो आप, दान पुण्य करने से पुण्य होता है ना, तो आपका गहना आपको दो मेरे घर का क्या लगा बताओ, और पुण्य होता ही है, इस वास्ते मैं देती हूँ। सासू ने कहा पति से लाओ मैं दूंगी, वो तो आपने दिया अपनी तरफ से, मेरी तरफ से गहना दूंगी। सेठ बड़ा प्रसन्न हुआ कि धोती देते इनको, कोई साड़ी देते तो लड़ाई करते, क्यों कपड़ा दो बहुत कपड़ा है, आज गहना देने कहती है बहुत अच्छी बात है, उसको दिया गहना दो, अब सास लाकर गहना दे सबको ही, या छोटी बहू दे तो बढ़िया, समझ रहे ये काम बढ़िया है, जो छोटी बहू करती है सास करती है, वो गहना उसके पटके वो उसके पटके, अब गहना हो गया ज्यादा, ये खाऊं खाऊं होने से चीज कम हो जाती है, देऊं देऊं चीज बढ़ जाती है, अब गहना तो बहुत हो गया, अब क्या करें, क्या क्या करें, हमारी जरूरत नहीं। छोटी बहू कहे देखो आपके छोरा छोरी है, ब्याह करोगे तो गहनों की जरूरत है, मेरी क्या जरूरत बता दो, ना छोरा है ना छोरी, मेरे तो कोई है नहीं, गहना बहुत है मेरे पास, मेरे साड़ियां दी साहब, एक दिन आया सेठ भाई साड़ियां दे दो, पांच पांच छह छह साड़ी एक एक घर में रख दी, नहीं वो चार पहुंची छह सात साड़ी एक एक साड़ी जोर से अपने जेठानियों के घर में रख दी। कहते बहू क्यों करती है तू, सास ने पूछा कि तेरे क्या बात है, सबको दिया तेरे जेठाने को सबको तेरे ससुर ने दिया है, कि सब दिया जाएगा तो पुण्य ससुर जी को होगा, पर मेरे पास है मैं तो मेरा पुण्य करूं, कपड़ा देते हो कि नहीं लोगों को, साधुओं को ब्राह्मणों को गरीबों को कपड़ा बांटते हो ना, हाँ तो उसे पुण्य नहीं होता है, क्या तू घर में है, घर में पुण्य नहीं होता, कपड़ा पहने तो पुण्य होगा ही, कैसी बात है। कहा तो ससुर से अपने पति से कहा लगा उसे मेरी तरफ साड़ी दूंगी, अच्छा भाई देव राजी हुआ, ये तो लड़ाई करती थी कि क्यों इतना गहना देते हो कितना साड़ी देते हो, अब हमारे अभी चीज बस तो एक एक पटके घर में वही उनके घर में उस घर में साड़ियां ही ज्यादा हो गई, गहना भी ज्यादा हो गया, नहीं तो इन्हें घाटा ही रहे है, मोटे कितने ही घड़ा दो बनाई, एक कहे नहीं तोड़ो हो तो रख दो, कहते भाई लोग और घड़ा और मत तो घड़ा और हमारे गड़ा हो जाए, ऐसे गड़े की भूख रहती है लोगों में, अब गड़े की भूख रही थी, अब डड़े की दड़ी लगी, अब गहने की क्या भूख रही, क्या कहने की बात रही, सब ठीक थी गले मिली, ऐसे जो चीज आओ दूसरों को देनी, आराम औरों को देना, धंधा काम अपना लेना, इस तरह से महाराज घर में प्रेम बढ़ गया। अब प्रेम बढ़ा आपस में तो वो पहले वाली जो भाइयों के दिलों जो खटपट थी वो खटपट मिट गई, अब उल्टी उल्टी दहपा होने लगी, देने की प्रवृत्ति काम लेने की प्रवृत्ति, ये असली चीज है। आप भी बताओ बहनों भाइयों अपने घरों में काम धंधा स्वयं करो, आराम दूसरों को दो तो बड़ा प्रेम बढ़ेगा आपस में, और चीज वस्तु औरों को दो आराम दूसरों को दो, कंजूसी कृपणता मत रखो, ये विशेषण यही आई थी यही पड़ी थी मरने पर यही रह जाएगी, देने की भावना से हृदय उदार हो जाएगा कल्याण हो जाएगा, लेने की भावना से अंतःकरण मेला होता है, सीधा तो यहाँ की यहाँ रहेगी साथ में चलेगी नहीं, केवल अंतःकरण मेला कर दोगे, इस वास्ते देने से अंतःकरण शुद्ध होता है उदारता आती है, नहीं जो कंजूसी होती है कंजूसी मक्खी चूस होता है, कंजूस देता नहीं उसको मक्खी चूस कहते हैं, मक्खी चूस क्यों कहे, घर में मक्खी पड़ जाए घी में तो घी के घी लगा हुआ न चला, मक्खी को चूस कर फेंक दे, घी लगा हुआ नहीं चला जाए इसके, तो मक्खी चूस आदमी बड़ा बड़ा आदमी है, मक्खी को भी चूसता है, इस बार मक्खी चूस बड़ा मक्खी चूस आदमी है, कृपण की बात बताई तो कृपणता से पतन होता है, उदारता से ठीक होता है, घर में कोई मिठाई आती है चौकी, अरे घर में एक उदार आत्मा उसको मिलती है, सब सोए नाचने लग जाते, फिर क्यों सब को मिलेगा। अरे कोई कोई कंजूस होती है, उसके हाथ मिठाई आते गई है तो कुएं अब मिलेगी नहीं, वो संच कर रखती है, वो लड्डू सूख जाते हैं, भीतर ईली पड़ जाती है, फोड़े तो पत्थर से फोड़े और ईली निकले भीतर। अब वे तारा तार बच्चों को दिया जाए कितनी आनंद की बात है, अरे संचय करने क्या होगा, मिठाई खराब होगी, जंतु तंतु बढ़ जाएंगे, अरे बारिश हो बेचारे मिठाई देख राजी हो जाते हैं, उनके हृदय में दुख होता है कि वो गया कुएं में, ये तो मिलेगी है नहीं, ये तो कही हो छाने छाने आपके स्वरों को खिलाफ दूसरों को दूध थोड़ा थोड़ा सर बढ़ जाए बढ़ जाए बोलो खा ले खा ले लाडू खा लिए छोरा वगैरह नहीं कि होशियार बहुत है, मुझे एक सारे सारे खिलाती है अपने बेटे को, हमारे को तो मानती नहीं, अरे बड़े हो जाए छोरा निकलेगा कपूत, क्यों स्वार्थ की भावना से जो छोरे होते हैं वो छोरे कपूत होते हैं, उदार भाव से छोरे उदार होते हैं, तो वे छोरे काम करते नहीं, माँ को देते हैं दुख, तब कह ले अब ले ले काम, माँ को लुका लुका के लाडू खिलाए थे वो जो उदार जो बताओ, तो सब सके समझते माँ है आ हमारी माँ है, जो सबको जो लाडू आ जाए अंगूर आ जाए सब बच्चों को देते हैं, तो ऐसी छोरी छोटी बहू में ऐसे गुण थे, उस गुणों के कारण से वो छोटी और बड़ी हो गई, ससुर और सास भी उसकी सलाह मांगते थे कि भाई ये सलाह अच्छी देगा, भावना से कानून बनाया जाए दुनिया के लिए सुख होता है, और स्वार्थ को लेकर के अपने धन कैसे ले किसने ले ले तो इससे पतन होता है। एक हमने बात सुनी भाई कहां तक सच्ची है भगवान जाने, करणी सिंह जी थे ये भी उस बड़ी संसद में थे, तो लोगों ने विचार किया कि ये धनी आदमियों का धन कैसे नष्ट हो, कि कानून बनाओ इतने कानून रख सकते इससे ज्यादा नहीं रख सकते कानून बनाओ, तो करणी सिंह जी बोले कि तुम धनियों को दरिद्री बना के भावना रखते हो, ये दरिद्री धनी कैसे बने, ये तो भावना करो भावना में कौन सा पैसा लगे, यो करो कि गरीब भी धनवान बन जाए, कि धनवान दरिद्री कैसे बने, इस वास्ते कानून बना कस करके जो धनापन ले लो सभी ये निर्धन हो जाए, वो निर्धन हो गए नहीं, वे सिखावे वकीलों को मरा कानून वो, अरे वे कानून को फट यू कर नहीं, जैसे अपने कहते वो डाली जाएगी वो चले पान पान, वे कोई कम थोड़ी ये बुद्धिमान है महाराज, वो कितना ही कानून बनाओ चकमा दे देते सब ले लेती देती नहीं पूरा, अरे बेईमानी और पैदा हो जाती, झूठ कपड़ से बेईमानी होती है, वह बेईमानी सिखाते हैं लोगों को, तो ये कड़ा कानून ठीक नहीं है उसे बेईमानी होती है, आज लोगों में बेईमानी कंजूसी कृपणता स्वार्थ की भावना बहुत भर गई, स्वराज से पहले इतनी नहीं थी, इसमें लोगों में उदारता थी अच्छा था त्याग था, क्योंकि राजा लोग होते थे वो जन का धन जनता का ही मानते थे, अपने ऐसा काम में नहीं लेते थे, आज अपना काम में लड़ने लग गए और महान बड़ा भारी अहित हो गया, ए हमने बात सुनी है भाई सच्ची झूठी तो रावी जी जाने, या घूसखोरी करते हैं और वो धन भेजते हैं विदेशों में, तो दरिद्र विदेश तो होता है दरिद्र, और उसमें धन धन उधर चला जाता है, स्वार्थ अपनी बुद्धि रहती है, मर जाते हैं राम नाम सत्ता भी उसके पास रहती नहीं, धन वही चला जाता है, उसे दे रहे कर्जा और अपने को मत कर दे दोनों होता है हर्जा, दोनों तरह से देश पताल में जा रहा है निर्धन हो रहा है, अरे उदारता हो तो क्यों रहे, इतना कर्जा हो गया है, हमने सुना है कि एक एक जितने प्राणी है हिन्दुस्तान में भारतवर्ष में एक एक सात सात हजार रुपयों का कर्जा, इतना कर्जा हो गया इस देश पर, अरे कर्जे वाला कभी सुखी नहीं होता, शास्त्रों में संतों ने सुनी है कर्जा नहीं लेना चाहिए, मांग कर लेना पर कर्जा नहीं लेना, कर्जा लिया हुआ परलोक में भी चुकाना पड़ेगा, सहायता ले ले तो उसमें इतना नहीं है, देने वाले की प्रसन्नता होती है, कर्जा लिया देने के लिए ब्याज लेते हैं और वह नहीं दिया जाए तो क्या होगा, तो अपना देश कर्जे में फंस रहा है, ये नीति आज चल गई, कानून ऐसे बढ़ाना और अपना घूसखोरी करके धन कमाना और विदेशों में जमा करना, इसे देश का बड़ा भारी अहित हो रहा है, ऐसी बात सुनी है भाई कहाँ तक सच्ची, आप लोग तो आप विचार करो, ऐसी बातें हो रही है, और टैक्स लगाया जाता है, इतना टैक्स अंग्रेजों का समय नहीं था, उस समय प्रजा सुखी थी बेचारी, अंग्रेजों का इस विदेश का राज्य है इसको कहकर पहले विदेशी राज्य निंदा करते थे, परंतु आज इस राजनीति ने कर्ज अंग्रेजों को भला करा दिया, वे बड़े भले थे, बड़े से विदेशी चूसते थे वे भले हो गए, आज अंध में कौन ही राव बिचारी एक दिन बड़े हो गई तो ऐसी दशा आज हो रही है। उस छोटी बहू ने ये आसन किया। अब ये है कर्मयोग, व्यवहार में त्याग करो, कर्मयोग से मुक्ति हो जाए। सांख्य प्राप्त स्थानम तद योगे गम्य दे, एक सांख्य और योग को एक बताई है, तब तो ज्ञान से जो मुक्ति होती है वो इस कर्मयोग से मुक्ति होती है। कि बाबू जी क्या नाम होगा, बैंगन पूरी, के बढ़िया बात है भाई, सागर सागर पूरी पूरी बैंगन साग उजाड़ पूरी है ही, तो सुखा मुझे ठीक से गुड़ी आम के आम गुड़ी के दाम, कितना काम बना घर में ही अपना काम हो जाए। इसलिए तो इस तरह से व्यवहार आप लोग करो, ये सीख करके जाओ, इसी तरह से लोग प्रशंसा करेंगे, आपकी प्रशंसा होगी, हमारी प्रशंसा होगी कि भाई स्वामी जी ने बात अच्छी कही। लड़ाई करोगी अगर करोगी तो कहेंगे सत्संग धूल धारी सत्संग में तुम लड़ाई करती है, तो हमारी धूल पड़ेगी कौन सी महिमा होगी, तो हमारी कृपा करो, हमारे पर धूल न पड़े ऐसी कृपा करो, त्याग रखो। देखो कितनी अच्छा हो, देखो सत्संग करने वालों के भाव अच्छे है, सत्संग करने वालों से लोग अच्छाई की आशा रखते हैं कि भाई अच्छा करेंगे, सत्संग करते हैं, सत्संग करने वाले ऐसे करे तो उनके बड़ा असर पड़ता है पूरा, कि सत्संग करो गीता पढ़े क्या फायदा, ये पढ़ते हैं ये बेहतर स्वार्थ आ गया। इस वास्ते स्वार्थ का त्याग करके दूसरों की सेवा भी कर दो तो घर में रहते हुए सन्यासी है वो, ये ऐसा नित्य सन्यासी हो नदी, जो इच्छा नहीं करता। तीसरा श्लोक पांचवे का, वो रहता हुआ सन्यासी, घर में रहता हुआ सन्यासी, त्रयोस्तु कर्म संन्यासात कर्मयोगो विशेषते, कर्मयोग विशेष होता है, जल्दी कल्याण करता है, नया काम करना नहीं, काम करते उसी काम से परमात्मा प्राप्ति हो जाती है, स्वार्थ बुद्धि से पतन हो जाता है। इस वास्ते दूसरों के हित के लिए ऐसा काम करो जिससे कि उन्नति हो जाए। तो ये व्यवहार में परमात्मा सिखाती है गीता, सुख दुख के सबे के पास लाभ लाभ हो जाएगा तो युद्ध आई युद्ध को पाप दिले पाप नहीं लगेगा, पाप स्वार्थ पर अभिमान नहीं लगता है, स्वार्थ का त्याग किया, अभिमान का त्याग किया, दूसरों के हित की भावना करी तो उसको पाप नहीं लगता है, नहीं होता।
आप परिवार नियोजन पर तो बहुत जोर से लताड़ते हैं, लेकिन दहेज प्रथा के लिए और ज्यादा लताड़ो, परिवार नियोजन में तो इतनी बात नहीं जितनी दहेज प्रथा की बात।
नहीं, परिवार नियोजन में तो सत्यानाश होता है मनुष्य का, उसमें धन का नाश होता है धन का, दोनों बातें अच्छी आपने बात कही, बहुत बढ़िया है। दहेज प्रथा से ही छोटी कन्या का निरादर होता है, ये जन्म जाएगी तो दान देना पड़ेगा, गर्भपात कर दो तो ठीक है, गर्भपात में सहायक है दहेज प्रथा, दहेज प्रथा अन्याय में कारण है। इस वास्ते बहनों माताओ, दहेज अपना बेटा हो दहेज लो मत, अपना बेटा पढ़ना हो, ऐसे सज्जन मेरे को मिले हैं जिन लोगों ने दहेज नहीं लिया है उनके बेटे भी बिना दहेज दहेज ब्याह हो गए, तो उनकी कन्याएं भी बिना दहेज दिए ब्याह हो गया, ऐसा हुआ है शुरू में रावनी मास जी थे क्या उनके लिए घर की बात है, तो ऐसे लोगों में है। जब आप नहीं लोगे तो देने की जरूरत रहेगी, खर्चा कम लगे तो कम लगाना तो हरेक चाहते हैं, लगाना तो कम चाहते हैं, लड़ना ज्यादा चाहते हैं, तो खर्चा कम होगा नहीं। लेने की प्रवृत्ति छोड़ो तो होता, बेटी जिसके है उसके बच्चे नीचे हाथ है, बेटी के बाप हो गया, अरे बेटी या बाप हरेक, तो बेटी का बाप है जिनको बेचारा नीचे देखना पड़ता है, अरे वास्तव में बेटी का बाप होता है बड़ा, क्योंकि वो अपनी कन्या का दान करता है। अरे आप दान लेते हो तो आप तो दोषी हो दान लेने वाले, कन्या दान करना दान करने वाला है, उस कन्या दान देने वाले को तंग करते हो, कितना पैसा लेंगे, इतने हजार लेंगे, लाख लाख दो दो तीन तीन लाख बेटी के ब्याह में लगाते हैं, आतिशबाजी करते हैं, आग कर देते हैं, आग में फूंक देते हैं पैसा, और ज्यादा लेते हैं, बड़ा पाप है ये, दहेज प्रथा है वो छोड़नी चाहिए, इससे बड़े अन्याय होते हैं। ये लड़की के गर्भपात करने में दहेज प्रथा भी एक कारण है, इस वास्ते गर्भपात होता है, तो बढ़िया बात गई है। तो दहेज रहने का त्याग करो, देने वाला क्या करे, लेने वाला जब लेता है ज्यादा तो क्या करे, बेटी है उसको ब्याहना पड़ता है, मन लेने वाले ही कम लोग हम नहीं लेंगे इतना। आप मैंने कहा ना आपसे आया दूध बरोबर, अरे मांग कर लिया पानी, अरे खेचा तारी खून बरोबर, ये संता की पानी कम कितना लेंगे, इतना बेटा बहेंगे तो लेंगे, वो खून के बरोबर तो अच्छा नहीं है। क्या बेटे का धन लेने से मनु दहेज लादे लड़े से क्या दरिद्रता मिट जाती है, लिया हुआ धन के तार धन चलेगा, धन तो कमाओगे तो काम चलेगा, दूसरे धन से धनी हो जाओगे आप, कभी नहीं हो सकते। इस वास्ते लेने की है चीज ये है दरिद्रता और देने की चीज है ये उदारता। दरिद्री इतने दरिद्री हो गए संतों में जाके खाऊं खाऊं गए, वृक्षों में भी खा जाऊं, ये ले लू पत्ती ले लू लकड़ी ले लू फूल ले लू फल ले लू खा जाऊं। संतों के पास महाराज हमारा काम सिद्ध हो जाए, हमारे बेटी का ब्याह हो जाए, हमारे धन में संपत्ति आ जाए, हमारा काम गिर गया, अच्छी बात बताओ। मैं भाई जानता नहीं मैं क्या बताऊ, मैं बताऊंगे त्याग करो ठीक होगा, स्वार्थ का त्याग करो, दूसरा का हित करो भला होगा, बल्कि दूसरे का समझ में आता ही नहीं। तो दहेज प्रथा छोड़ देना ये बहुत अच्छा का बड़ी अच्छी बात याद रहा दी हमारे को। तो बहनों माताओं से कह रहे ऐसे है कि आप दहेज प्रथा मत बढ़ाओ, लेने की बात मत करो, हम तो कुमकुम कन्या रौली मौली कन्या बस हमारी तक बहुत काफी है, धन हमारे है कि बेटे के सासरे से धन निहाल कर देगा। इन माया में बड़ा स्वार्थ रहता है, ये मिठाई फल आज तरह तरह के, पहले मगध बनाते कसार बनाते थे बेटू दे देते थे, आज महाराज पिस्ता की बर्फी विदमों की बर्फी ये तो रहते और बहुत फल इतना दे घर में, फिर भी कहते थोड़ा दिया है हमारे इतना बड़ा परिवार कितना खाया है बेटे के सासरे से। बहू सुने वही माँ की करे निंदा तो फिर सासू क्या करते हैं, कभी कभी बहू का भी आएगा तो पता लगेगा, अब सब लड़ाई में क्या फायदा। महाराज जनक जी की महिमा भाट जिम बरनी, महाराज दशरथ जी ने रणवास में कहा जनक दादा इतना उदारता करी इतनी उदारता जैसे भाट जो वर्णन करते हैं, तो छोरियां सुनती है सभी ठीक है हमारे पिताजी की महिमा है तो माँ बाप की महिमा हरी टावर राजी होता है तो आपस में प्रेम बढ़ता है, और तुम उसकी निंदा करो कि देखो मेरी बीनने के लिए शास्त्र इतनी सी चीज आई बताओ इतना बड़ा हमारा परिवार किसको उसको दे बताओ। तो माँ जी चुप रहो वैसी मिठाई घर में बनाओ चुपचाप, उन्हें दूने चिगड़ी फिर बांटोगे हमारे बहू के साथ में संभाल आई है आस दो सभी सबकी लोग देखे तो भूख देखती देखो मेरी माँ की महिमा के लिए तो बाबा महिमा के बजे रुपया लगता है रुपया, अरे रुपया तो लगता है पर एक आदमी खरीद जाता है बहू आपकी हो जाएगी, निंदा करो तो आप बहू आपकी रहती है पढ़ाई हो जाएगी, तो 100-200 रुपयों में एक खरीद ली जाए तो सस्ती है इधर, ऐसे पैदा करके बांटो कितना बढ़िया काम हो कितना अच्छा काम हो जाए। छोरा होता है छोरा छोरी में तो छोरे का लाल रखे छोरी के लहरान तो निखा ले आरान जारान करान, कुंवारी कन्या भगवती देवी का स्वरूप उसको रान के बोलते बहुत खराब क्या शब्द काल पड़ गये भाई बेटी ऐसा बेटा ऐसा काम ऐसे शब्द बहुत से है जो बाधारणी रान शब्द को बड़े खराब चीज है नहीं आदर करो। तो कुंवरे पड़े मैं तो छोरे का आदर करे, ब्याह होता है तो बहू से छाने छाने बेटी नहीं भेजे बाजी क्यों करो भाई महाराज वो जीती उस दिन बाप रे खून देगा बताओ वो देव जीती बैठी हुई जीती तो तय देन बंद कर दिया वो देवा बहुत है कि मेरे तुम नंद को तुम देव तुम्हारे हाथ से देव तो देने का आदत रहे तो कई दिन मिलेगा क्षण क्षण देव तो बहू कंजूस आ जाएगी बेटी को जरा कम हो जाएगा अच्छे गुण से ज्यादा पहुंचे बेटी आदर ज्यादा होगा नहीं तो नंद सुहाती नहीं है बोझाए कई कई सोच हम बोलती है हम तो कुंवारी रहेंगे मैं कहते भाई कुंवारी नहीं रहना ब्याह कर लेना जब तक तो माँ बाप जब तक तो तुम्हारा राज अरे भोजाया आ जाएगी तो नंद भारी होती है कि अब मेरा घर खावा बेटी नंद बुरी होती है तो ब्याह हो जाने से अपने घर जाओ मौज से रहो आनंद से तो मैं लड़कियों को कुंवारी रहने की सलाह नहीं देता हूँ छोरों को भी नहीं देता हूँ हरे के साधु बनाने की है मेरे साधु बनाने की ऐसी आदत नहीं है अगर हो जाएगी तो भगवान जाने अभी तक तो नहीं कृपा कर भगवान ने रक्षा करी है। साधु क्यों बनाओ घर में रहता काम करो अच्छी तरह से मुक्ति में फर्क नहीं पड़ेगा साधुओं की मुक्ति को और तरह हो और कृष्ण मुक्ति वैसी नहीं हो ऐसी बात नहीं है मुक्ति एक ही है। इस वास्ते त्याग शांति ये सूत्र है गीता कहती है त्याग तो लेने का त्याग करो दान पुण्य करो उससे अपेक्षा भी लेने का त्याग करने का ज्यादा पुण्य है। पांचवा में तीन तो भगवान शंकर एक शक्ति।